श्यावर रामचंद्र आपने वैराग की बात के लिए कहा, तो वैराग की बात तो बहुत ही बढ़िया है। और वैराग जो है सभी साधना के मां वैराग की आवश्यकता है। बिना वैराग के बिना न भक्ति को साधन सिद्ध है, न ज्ञान को, न योग को। वैराग एक बहुत उच्च कोटि की चीज है। पूर्व के ऋषि लोग वैराग के वास्ते ही समझो कि वन में वास किया करते थे, और हम लोग जो यहाँ आते हैं वो वैराग के लिए आते हैं। नहीं तो अपना समझो कि गीता भवन का जो हॉल है उसमें तो 10 आदमी बैठो, 8 आदमी बैठो, और एक प्रकार से बहुत ही आराम की जगह है। तो उस आराम को छोड़ करके जंगल में क्यों आते? वैराग के लिए, कि यहाँ वैराग लहराता है। वैराग की एक प्रकार से समझो कि इस वन में जाकर प्रवेश करो कि मानो कोई वैराग के राज के मां आ गया, और ऊपर के पहाड़ों में चले जाओ जंगल के बीच के मां, तो समझो कि वहां वैराग ही वैराग परिपूर्ण हो रहा है। कोई समय में वन में बैठते हैं तो चारों तरफ वृक्ष के स्वर कोई वस्तु नहीं दिखती, गंगा जी का भी दर्शन नहीं होता, और यहाँ भला गंगा जी तो दिखती है। तो गंगा जी का जो दर्शन है इससे भी वैराग उत्पन्न होता है, और पहाड़ का गुफा का जो दर्शन है इससे भी वैराग याद आता है, और जंगल तो एक प्रकार से वैराग की लहरा उत्पन्न कर ही रहा है। तो ऋषि लोग जो है, मुनि लोग जो है, वे पहाड़ों की गुफा में रहते थे। पहाड़ माने गिरी, गिरी गुहा, गिरी गुहा को मतलब है पहाड़ों की गुफा, और यह वन में रहते, वन का नाम है आरण्य। तो आरण्यवासी कहते उसके वनवासी, आरण्यवासी कहते हो चाहे वनवासी कहते, तो वन के मां जो वास करे वो वनवासी। तो अपने भी थोड़ा दिन के लिए वनवासी बन जाओ, हटाकर चलो भाई वनवासी बनो। शहर के वासी तो सदा ही, किंतु थोड़ा दिन वनवासी बनो। तो यहाँ देख लो प्रत्यक्ष के बीच के वहां आपने बहिराग का आपने साज है, सो प्रत्यक्ष है। चित्त के वहां स्वाभाविक ही वैराग हो जाता है। बहिरागवान जो पुरुष होते हैं उनके तो दर्शन से, उनके तो स्मरण से वैराग हो जाता है। वैरागवान पुरुष जिस मार्ग से चलता है वो वैराग को वितीर्ण करता हुआ चलता है। जैसे कोई भाई समझो कि इत्र लगा करके चलता है, किसी के पास में किस्तूरी है और वो चलता है, तो किस्तूरी की जो सुगंध है उसका आपने वितीर्ण करता हुआ चले, इत्र का भी वितीर्ण करता हुआ चले। तो जैसे इत्र और किस्तूरी कपूर आदि के जो परमाणु जो है सुगंधी के, तो सुगंधी के परमाणु एक प्रकार से फैल जाते हैं, तो इससे भी और ज्यादा समझो कि परमाणु होते हैं वैराग की। चेहरे की जो मुद्रा है उससे भी समझो कि आपने वैराग का वितीर्ण होता रहता है। जो वृत्त जो महात्मा जो पुरुष होते हैं, बीत राग जो पुरुष, जिनकी राग बीत गई, जिनमें राग नहीं है, वैरागवान जैसे आजकल कोई जाति हो कहते हैं कि विरक्त पुरुष है, अपने वैरागवान है। एक साधु को आजकल कई एक कौम को वैरागी साधु कहते हैं, वैरागी, किंतु वो तो एक समझो कि बेस का नाम वैराग है, असली वैराग नहीं है। बाहर का जो स्वांग वैराग का तो समझो कि चाय से ही बना लेता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। असली वैराग होना चाहिए कि जो भीतर के मां वैराग हो। संसार के ऐसे जो विषय भोगों को जो ठुकरा देता है मन से, वो सच्चा वैरागवान है। वैरागवान की अपेक्षा है कि उनके दर्शन से दूसरों को वैराग पैदा हो जाता है। मंगलनाथ जी महाराज थे तो उनके नेत्रों में और उनके एक प्रकार से वृत्ति के वहां वैराग रहता था। वे चलते थे तो उस समय जो कि उनके वैराग झलकता था उनके नेत्रों से, जैसे स्वयं ज्योति जी थे, बड़े वृत्त पुरुष थे। हमने बहुत से वृत्त पुरुषों के दर्शन किए हैं। एक ठहलदास जी साधु थे, एक प्रकार से बड़े वृत्त पुरुष, कमल घाटी में रहते थे, बूढ़े आदमी, और वहां तो बहुत से वृत्त रहते थे। वो तो वृत्तों की टोली टोली माया करती थी। समझो कि जीवन मुक्त जी नाम उनका जीवन मुक्त जी, और उन वृत्तों के बीच के वहां एक का नाम आत्मा राम जी था, आत्मानंद, और एक का नाम हीरानंद था। ये सब बहुत वृत्त पुरुष थे। सच्चिदानंद बहुत बूढ़े साधु, बड़े वृत्त और पंडित थे। गुरुमुख दास जी वृत्तों की टोली के वहां आदमी थे। सब प्राय बहुत से मर गए, चले गए एक प्रकार से। हमने कई वृत्तों के दर्शन किए हैं। एक हरिहरनाथ जी थे और एक सफेद कपड़ा के मूला सिंह जी थे, भक्त सिंह जी थे। ये पुरानी झाड़ी में रहते थे। अब ऐसे वृत्त पुरुष संसार में बहुत कम देखने में आते हैं। पूर्व के जमाने में शास्त्रों में तो उच्च कोटि के वृत्तों की कथा हम पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के समय के बीच में स्वाभाविक ही चित्त के वहां मनुष्य के वैराग हो जाता है। जैसे भर्तृहरि का वैराग शतक है और योग दर्शन का वैराग प्रकरण है, तो इसके पढ़ने से चित्त के वहां वैराग उत्पन्न होता है। और वृत्त पुरुषों की कथा पढ़ने से वैराग होता है, उनका दर्शन करने से, उनको याद करने से चित्त में वैराग उत्पन्न हो जाता है। मैंने 1956 की साल के वहां आरंभ के बीच के वहां मंगलनाथ जी के दर्शन चूरू के वहां लोह की बगीचे के ऊपर किए थे। उस वक्त के वहां इनके चेहरे के ऊपर समझो कि वैराग छलकता था। दर्शन करने के लिए मैं गया था, हमारे पिताजी साथ थे और हमारे गुरुजी गणेश जी भी साथ में थे और श्री राम जी मास्टर थे। उससे वैराग की मुद्रा से उन्होंने जो बात कही वो तुम्हारे याद नहीं रही, क्योंकि उनको 56 वर्ष हो गए। तो हम उस वक्त में बालक ही थे, हमारी 14 साल की उम्र थी, इसलिए वो बातें याद नहीं रही, किंतु वो उनकी मुद्रा याद रही, उनका चेहरा, उनका वैराग उसे कि हमारे हृदय में छाप पड़ी। बहुत दफा हमारे हृदय में उससे ये बात पैदा होती कि हम भी विरक्त बने, हम भी एक प्रकार से सच्चे विरक्त बने। कभी तो ये होता कि घर बार को छोड़ करके और जंगल को चले जाएं। हमारे साथी थे भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार, नहीं हनुमान प्रसाद गोविंद का, वे कभी कभी कहते वैराग की बात को, सो बोले चलो अपने जंगल में चलो। अरे जंगल में तो चले किन्तु तुम ठहरोगे नहीं भैया, हमारे पल्ले बांध दोगे, तुम वापिस लौटे आओगे। अपने खूब वैराग अब हृदय में बढ़ाना चाहिए। अभी तो उस वक्त के बीच के वहां समय समय पर जो वैराग की बात होती थी तो एकदम वैराग का भाव जागृत हो जाता था। वैराग की बातों में इतना एक प्रकार से प्रभाव है कि एक दफे तो समझो कि जो व्यसन जो खानगी उसके भी चित्त में वैराग हो जाते। हम तो समय के ऊपर जब मंगलनाथ जी को याद कर लेते हैं तो हमारे को वैराग का स्वरूप याद आ जाता है। और समझो कि सुखदेव जी महाराज को याद कर रहे थे, सुखदेव जी का जैसा चित्र आजकल संसार में मिलता है वो हमारे को पसंद नहीं है। हमारे हृदय के बीच के मां सुखदेव जी का जो चित्र है कि हम जैसा सुखदेव जी को समझते हैं, वैसा चित्र हम नहीं देखते। वो चित्र एकदम वैराग से परिपूर्ण, उपाय क्या करें, हम चित्रकार तो नहीं तो कैसे बनाऊं। हमारे दिल के बीच के हमारे कि भाई वैरागवान का चित्र कैसा होना चाहिए। हमने बहुत वृक्षों के दर्शन किए तो सुखदेव जी की तो बात है क्या, उनका तो नाम उच्चारण करने से चित्र वैराग उत्पन्न हो जाता है। सुखदेव जी जिस मार्ग से चलते थे मानो एक प्रकार से वैराग के परमाणु फैला देते थे, जैसे कोई प्लेग का बीमार और प्लेग के परमाणुओं को फैला देता है। लोगों को कुछ दिखता नहीं, पास में रहने वालों को प्लेग हो जाती है। तो इसी प्रकार से वैरागवान पुरुषों के पास में रहने से वैराग पैदा हो जावे, दिखा कुछ भी नहीं तो वो सच्चा वैराग है। महाभारत के शांति पूर्व कथा आती है कि जिस समय में वेदव्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी है, ये अपने पिता के पास गए और पूछा कि आप मुझको उपदेश करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे से भी बढ़कर के राजा जनक है, जनक उनके पास तुम जाओ, वे तुम्हारे को खूब अच्छा उपदेश कर सकते, किंतु जाना पैदल, तुम योग के द्वारा आकाश मार्ग से नहीं जाना, गुरुजनों के पास में जाना तो बहुत सादगी से और नम्रता से जाना चाहिए। तो राजा जनक बड़े उच्चकोटि के महापुरुष हैं और उनके पास जाकर तुम शिक्षा लो। तो वे गए, राजा जनक के यहाँ खबर भेजी कि सुखदेव जी महाराज पधारे, वेदव्यास जी के पुत्र आपसे शिक्षा लेने के लिए आए हैं। बहुत ठीक है, ये रावले के मन जाकर के और जवान जो औरता है बहुत सुंदर है और जिनकी 16 वर्ष की उम्र के प्रकार से ऐसी एक औरता, उनसे जाकर कहा कि मैं तुम्हारे पास में मां सुखदेव जी आए हैं, तो उनको एक प्रकार से आपने शरीर के मालिश करना, उठना मालिश करना, स्नान कराना, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाना, खूब एक प्रकार से उनका श्रृंगार कर और उसके मां ख्याल करके देखो कि आसक्ति के विषय में परीक्षा करो। तो खूब सुंदर स्त्रियां हंसती हुई और समझ लो कि कटाक्ष करने वाली, खूब एक मनुष्य को मोहित करने वाली ऐसी स्त्रियां, और उनके शरीर की उठना लगावे, कोई हटा गए कोई पैरा गए, फिर खूब स्नान कराया मलमड़ करके, स्नान करा करके फिर बढ़िया वस्त्र पर आए। तो जैसे माँ जो अपने 2-3 वर्ष के लड़के को जैसे स्नान करा, वो भी रोए और हाथ पग तड़फ है, पर तो कुछ नहीं, एक शब्द जो की कोई पाषाण की मूर्ति हुए उसको चाहे स्नान कराओ चाहे वस्त्र पहनाओ, जैसे कोई लक वाला आदमी हुए उसका हाथ यहाँ धर दे तो यहाँ पड़ा रहे, यहाँ धर दे तो यहाँ। तो वे एक प्रकार से कहीं हाथ के लगाते है तो भाई अपने हाथ को थामे, अपने छोड़ दे, अपने शरीर का हाथ लगावे, अपनी तरफ से ही उसके ऊपर खूब एक प्रकार से चेष्टा करी, किंतु उसमें काम की गंध भी नहीं, अच्छी तरह से कपड़ा और सब पढ़ाया, खूब एकदम आपने खूब सेवा करी, किंतु उसके तो ऐसा है कि जैसे कोई पाषाण की मूर्ति हो, जैसे कोई आपने कपड़े का पुतला हो, और मैंने जैसे करे वैसे कर दो। उन सुखदेव जी की तरफ से कोई भी चेष्टा नहीं हुई, ये देख करके कि वो सारी खबर राजा को पूछा कि ये बात है। राजा ने सोचा कि इसके ऊपर कुछ असर हो, बोला क्या असर हो, कुछ भी नहीं, जोक होती नहीं अपने जोक, वो खून पर चढ़ दिए किंतु पत्थर पर थोड़ी चढ़े, जोग ने पत्थर पर चढ़ावे तो पत्थर पर क्या करे जो, और खून हो तो उस पर चढ़ जावे। तो उनके तो रोम रोम के बीच के वहां बैराग भरा हुआ है, ऊपर से भरी हुई है, वो तो एक प्रकार से देखते नहीं किसी को, नजर से उठा करके छूते नहीं, एक प्रकार से व्रत एकदम नेत्रों के वहां बैराग वास करता है। तो फिर राजा जनक ने उनको अपने पास बुलाया, आप क्या चाहे? बोले मैं आपसे ज्ञान सीखने के वास्ते। बोले महाराज आप क्या ज्ञान सीखोगे? आप तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हो, बल्कि एक प्रकार से भ्रष्ट तो आप को सीखना कुछ भी नहीं, आपसी के साथ ही हो। आपके पिताजी ने मेरे पास इसीलिए भेजा है कि उनके बचनों पर विश्वास हो जाएगा बोल करके, और आप बड़े वृत्त महात्मा पुरुष हो, आपकी बड़ी ऊंची अवस्था है। तो दूसरे जीवन के वहां योग वशिष्ठ में तो ये लिखा कि फिर ऐसी बात है तो हमारे को जो शांति क्यों नहीं मिलती है? इसलिए नहीं मिलती है कि आप अपनी अवस्था को नीची मान रखे, इसलिए आपको शांति नहीं मिलती। आप समझते हो कि उसके आगे और भी कुछ साधन करना है। अब आपको साधन सुधन कुछ भी नहीं करना, एकांत में जाकर के ध्यान लगाओ आपने, ठीक है? जाकर ध्यान लगाया, समाधि ला, वह तो सब तैयारी तो थी। जैसे बिजली जब फिट हो जाती है तो फिर दबाने के साथ खुश हो जाती है, किसी करना धरना नहीं पड़ता। तो वहां बिजली फिट ही क्षण मात्र के बीच के वहां बस समाधि लग जाए उनका क्या। तो वे जो रास्ता चलते थे तो उनका चलना एक प्रकार से दूसरा ही हा, बैरागवान पुरुषों का चलना भी एक अलौकिक होता है। एक समय के बीच के वहां बतला है कि सुखदेव जी जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज जा रहे हैं, एक जलाशय आ गया, उस पर स्त्रियां स्नान कर रही थी। वेदव्यास जी को देख करके वे झट अपना अपना कपड़ा उठाकर पहनने लगी, शर्म करने लगी। वेदव्यास जी ने कहा कि मेरा लड़का अभी इधर में गया, खूब जवान अवस्था के बीच में, उसको देख करके तुमने किसी ने भी शर्म नहीं की, लज्जा नहीं की, और मेरे को देख लज्जा करती हो, ये क्या बात? बोले महाराज आप भी महात्मा पुरुष हैं और आपका लड़का भी महात्मा है, किंतु इतना फर्क है कि आपको ये ज्ञान है कि स्त्रियां है, और आपके लड़के को ये ज्ञान नहीं है कि स्त्रियां या पुरुष है, पशु या मनुष्य, तो उसकी हम क्या शर्म करें? पशु भी तो रात दिन जाते हैं, हम थोड़ा शर्म करते। तो एक प्रकार से थी वेदव्यास जी के चित्त के ऊपर बड़ा असर पड़ा, छाप पड़ी, बोले वाह इनका कहना ठीक है, मुझको तो ज्ञान तो है ही, ये स्त्रियां हैं, ये एक प्रकार से शर्म करती है। तो उनके चित्त के मां बड़ा भारी बैराग था। एक समय के बीच के मां राजा परीक्षित की सभा में जा रहे, रस्ते के बीच के मां लड़के मिल गए, उन्होंने सोचा कि सीधी है यह पगला पागल समझ करके, और उसके ऊपर कोई कूड़ा डालता है, कोई पत्थर डालता है, कोई रेत डालता है, इस प्रकार से डालने लगे। डाले तो कोई परवाह नहीं, उनके शरीर पर बालों पर सब जगह कूड़ा करकट पड़ा है, उनकी उसमें ही शोभा है, क्योंकि वो तो व्रत है ना, वैराग के लिए तो शोभा है। ऋषि के यहां पहुंचे तो सब ऋषि लोग खड़े हुए देखकर उनको, उन्होंने पूछा एक प्रकार से राजा परीक्षित ने कि क्या बात है, ये उम्र में सबसे छोटा दिखता है और तुम सब खड़े होकर इनका आदर करते हो, बात क्या है? बोले हम लोगों के बीच के मां गुण है सो बड़ा है, अवस्था का कोई मूल्य नहीं, गुणों में सबसे बढ़ करके है, इसलिए हम लोग इनका आदर करते हैं। फिर सुखदेव जी के बैठने पर सब बैठे तो वहां पुष्पों की बोछाड़ होने लगी, कूड़े करकच की जो बोछाड़ है और पुष्पों की जो बोछाड़ है उनके लिए तो दोनों ही समान है, दोनों ही कूड़े के समान है, वह पुष्प भी कूड़े के समान, पर वास्तव के में कूड़ा ही कूड़ा करकच ही है। आज एक प्रकार से हम पुष्प ले आते हैं, रखते हैं, रात भर रहते हैं, दूसरे दिन लोग रोकते झाड़ू दो, झाड़ू देकर साफ करो। ये पुष्प पास जो पड़े हैं कूड़ा करकट है और क्या, इसको भुवार कर साफ करो। तो दूसरे दिन तो अपने यहाँ ही कूड़ा करकट हो जाता है। वो एक ही दिन के लिए, थोड़ा समय के लिए रहता है उसके। तो वैरागवान जो पुरुष होते हैं उनकी अद्भुत बातें होती है। रात्रि के समय के वहां सिंधु गंगा किनारे कहीं या कोई मकान के वहां कई भाई लोग सो रहे हैं, उनमें कोई व्रत है और कोई शौकीन है और सभी पदार्थ पड़े अपने वहां। प्रातःकाल यदि शीत पड़े तो अपनी इच्छा अनुसार वहां ओढ़ सकते हैं। वहां चट भी पड़ी है, दुसाला भी पड़ा है, कांबड़ भी पड़ी है। जो शौकीन जो है उसकी दृष्टि तो दुसाले पर जाएगी, वो तो उसकी तरफ हाथ डालेगा। और विरक्त है, उसके हाथ में कांबल आ गई तो चट आ गई, दुसाला हाथ भी आ जाता है उसको फेंक देते है। आप हर एक भाई अपनी तरफ ख्याल करके देखो। जैसे स्वामी जी है और इनको आपने कह रहे कि भाई महाराज जी हम दुसाला ले, आपके लिए जाए, आपको ये लेना ही होगा। तो स्वामी जी बोले भाई हमारे काम की चीज ये नहीं है, साधुओं के काम की, ये तो तुम्हारे गृहस्थियों के काम की है। साधु दुसाले को क्या करे, उनके लिए तो समझो कि कोई कमल हुए तो कोई हर्ज नहीं, और उससे भी और कोई मोटा वस्त्र चट हुए तो भी कोई हर्ज नहीं, किंतु साल दुसाला क्या करे उसको। और इसी प्रकार से थी ये गर्द जो होती है, गर्द उसे दुसाले से ज्यादा दाम होता है उसको, समझो कि वो मुलायम होती है और दामी चीज होती है। दृष्ट आदमी तो उसको छू भी नहीं सकता। बतलाया जाता है कि जो गर्भवती जो भेड़ होती है उसको मार कर और उसके भीतर में से जो बच्चा निकाला जाता है उसी के ऊपर के जो बाल है उसकी वो बनती गर्भ। ऐसा छोड़े हैं देखा नहीं, तो वो तो एक महान हिंसा की चीज। ये कमल जो है इसमें हिंसा नहीं है, क्यों कि ये भेड़ की ऊन की है, और भेड़ को लोग क्यों पालते हैं कि ऊन के लिए, नहीं तो उसको पाले कौन। तो एक प्रकार से इसलिए उसमें हिंसा नहीं है, और उसके जो बाल है वो पवित्र माने गए हैं, उस पर मैला कम आता है, दूसरा उसके ऊपर दूसरे परमाणुओं का असर उस पर कम होता है। तो वैरागवान जो पुरुष होते हैं वे तो एक प्रकार से थी उसी तरफ उसका मन जाता है, या चद्दर या कम्बल। तो वैराग यदि बाजार में मोल भी गए तो मंगा ले, बाजार में मोल नहीं मिलता। वैराग है, प्रेम है, ये श्रद्धा है, ज्ञान है, ईश्वर की भक्ति है, ये तो ईश्वर की कृपा से, ये चीज तो हृदय से पैदा होती है। इन सब के पैदा होने का स्थान हृदय है, और हृदय में पैदा होकर के और नेत्रों से झलके वो चीज, चेहरे की मुद्रा पर भी वो चीज आती है, और नेत्रों से निकल करके फिर बाहर में फैले। तो जो इसके पात्र होते हैं उन पर उसका असर होता है। तीव्र जो वैराग होता है तो एक बार असर उसका अपात्र पर भी होता है। हमने जब 14 वर्ष की अवस्था के बीच में मंगलनाथ जी के दर्शन करे थे और भी साधुओं के दर्शन करे थे, हमारी छोटी उम्र थी तो हम पात्र नहीं थे, तभी हमारे ऊपर असर होता था। तो ऐसे हम अनुमान करते हैं जब हम पात्र नहीं थे और हमारे पर भी उस बैरागवान पुरुषों का असर होता था, बीतराग पुरुषों का, तो जो पात्र है उन पर तो जरूरी होना चाहिए। ये हम अपने पर घटा करके कहते, अपने में सब बीती हुई बात आपको बतलाते। पुराने जमाने में भिकारी में, रतंगड़े में, चूरू में अच्छे अच्छे साधु आया करते थे, बड़े वृद्ध साधु आया करते। चूरू में एक अनंतानंद जी साधु आते थे, बड़े वृद्ध थे, उनका शरीर खूब लंबा चौड़ा था। ये करीब 50 वर्ष की बात होगी या 45 वर्ष की हो सकती, तो उनके पास जाने से चित्त के मां बैराग होता था। हमारे मित्र जो द्वारकादास जी गोविंद का, उनके पास रोज जाते थे। हमारा काम तो साधुओं के पास जाने का कम पड़ता था। हम बखरनाथ जी महाराज के पास समय समय पर जाते थे, बड़े बड़े वृद्ध पुरुष थे। कभी रत्नगढ़ से चूरू या कभी एक प्रकार से भिकारी से रत्नगढ़ कहीं आते जाते, तो समझो कि बस जब चित्त में वैराग आता तब भी चल देते। उनके वहां से विदा होने के बाद मालूम पड़ता, उनके खोजों को चिन्ह देकर के लोग दूसरे अनुमान करते, पूछते कि भी क्या महाराज जी ने कोई बात उठाई। बोले बात तो क्या ही, एक वहां के रत्नगढ़ के कितने भगत आए थे, उन्होंने कहा था कि महाराज जी आप आओ, तो कहा भी देखा जाएगा, तो शायद रत्नगढ़ चले गए हुए, ये ऐसे अनुमान लगाते थे। बहुत से आदमी तो कामना को लेकर उनके पास जाते और निष्काम भाव से यानी आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से बहुत कम आदमी जाते थे। आजकल के समय के बीच की मत हो समझो कि बहुत आदमी कल्याण के लिए आते। उस समय के वहां हम देखते थे उनके पास में बहुत से भाई लोग जाते हैं, तो कोई तो मुहूर्त पूछने के लिए, कि मुहूर्त के लिए कोई बीमारी की दवाई पूछने के लिए, और कोई एक प्रकार से विदेश जाने के वास्ते कि हम कौन से दिन में जावे, बता भी दिया करते थे। लोगों की श्रद्धा